पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं णमिऊणणन्तजिणम् अनन्तनाणेन दीठसौवट्ठं कम्मपदे सविहत्यम् ओच्छामि जहागमं पयलो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाउडर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्व आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार चल रहा है अपना, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 67 पर आ गए। 67 यहाँ हम सन्निकर्ष देख रहे थे और उसमें जघन्य का प्रकरण चल रहा है। आदेश में हमने देखा है, सॉरी ओघ से देखा था, अभी आदेश से बात चल रही है नारकियों में। तो कल हमने पढ़ा था 67 पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ में आदेश से, वहां से आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। क्योंकि मिथ्यात्व की जघन्य हमने कहां देखी थी, अभी गुणित नहीं कहा, जघन्य करना है, शपित कर्मोंशित को लेना है। हाँ, सातवें नरक में उत्पन्न हुआ है, समय तो प्राप्त किया है, अनंत आनंद की विसर्जन दी के लास्ट में जाके मिथ्या तो नहीं गया। तो जाने के पहले जब तक समय दृष्टि था, उसके अंतिम समय में वहाँ मिथ्यात्व की जघन्य है, परंतु उस समय समय मिथ्या सम्यक्त्व की जघन्य नहीं होती। तो कितनी होती है, तो असंख्यात गुणी अधिक होती है। क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य कब कहलाती है, तो वो सारे क्षपित कर्मोशिक दीर्घ उद्वेलना काल, फिर उद्वेलना करते करते अंतिम समय में आया है। तो उस अंतिम समय की अपेक्षा यहाँ पर असंख्यात गुणा प्रदेश है। हाँ, उसके अपने अपने उसके अपनी जघन्य लेना। उत्कृष्ट होती है सपना के समय, तो उत्कृष्ट होता है ना, कृतकृत्य वेदक में हमने देखा था। हाँ, संक्रमण होता है उसमें, मिथ्यात्व के परमाणु समय मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व के परमाणु समय प्रकृति, वहां तो हमने उत्कृष्ट देखा था। अब हमें जघन्य देखना है, तो उद्वेलना में लेना। कहीं भी हो सकता है उद्वेलना, कहीं भी पूरी हो सकती है, नरक में ही, नरक में लेना है। यानी जहां कहीं जघन्य है उसकी अपेक्षा यहां पर उसका असंख्यात गुणा है। यानी मिथ्यात्व की जब जघन्य है, तब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक की क्या पोजीशन है, तो वो अजघन्य है। अजघन्य तो कितना अधिक है, असंख्यात गुणा अधिक है। क्योंकि वो जघन्य का हमने एक क्षपित कर्मांशिक, फिर वो मिथ्या सम्यक रखा शास्त्र सागर के बाद, क्षपणा करने के बदले फिर मिथ्यात्व में गया और लंबे काल में उद्वेलना की। तो उद्वेलना करते करते वो नरक में जब उसकी उद्वेलना होगी, कहीं पर भी, पहले समय लेने की जरूरत नहीं, कहीं भी नरक में आने पर कभी भी हो सकती है। क्योंकि पल्ले का असंख्यात भाग उसने पहले भी बिताया होगा या यहाँ पर आके बिताएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ कहाँ उसका जो जघन्य है, उस जघन्य के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर उसकी अजघन्य है, वो असंख्यात गुणी अधिक है। अब जहाँ मिथ्यात्व की जगन्य है उस पोजीशन पर 12 कषाय और 9 कषायों की नियम से अजघन्य होती है। जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है, क्योंकि 12 कषाय और 9 कषायों की नारकियों के लिए जगन्य कब कहलाएगी? वो क्षपित से आया है और पहले समय में घटित होगा। अब शंका, स्त्री वेद और नपुसक वेद की अजघन्य प्रदेश विभक्ति असंख्यात वे भाग अधिक हो, क्योंकि मिथ्यात्व में जाकर प्रतिपक्ष प्रकृति के बंधक काल के अंतिम समय में जघन्य सत्कर्म उपलब्ध होता है। हमने पहले, आपको याद होगा, मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुसक वेद को लंबे आयु के लास्ट में जाकर उसको जघन्य रखा था। मिथ्यात्व का जघन्य तो सम्यक्त्व के अंतिम समय में होगा। अब वो समय दृष्टि आयु के अंत में मिथ्यात्व में गया है, तो स्त्रीवेद और नपुसक वेद का प्रतिपक्ष का बंध होता रहा अंतर्मूर्त तक, तो उस बंधक काल के अंतिम समय में स्त्रीवेद का या नपुसक वेद का अपना जघन्य होगा, नारकियों के लिए अपना जघन्य। इसीलिए इसकी शंका क्या है कि उनका तो जघन्य एक अंतर्मूर्त के बाद वहां पर उपलब्ध होगा, और उसका भी अजघन्य प्रदेश विभक्ति असंख्यात भाग से अधिक है। क्यों असंख्यात भाग से अधिक क्यों है? यहाँ अजघन्य क्योंकि जघन्य अंतर्मूर्त के बाद होने वाली है, इसलिए असंख्यात भाग यहाँ अधिक है। ख्याल में आती है ना बात, क्यों कहना चाहते? क्योंकि इसका जघन्य होने के लिए अभी अंतर्मूर्त बाकी है, तब जाके जघन्य होगा। उसकी अपेक्षा से अब यहाँ पर असंख्यात वा भाग अधिक कहते हो तो ठीक है, हम मानते हैं ऐसा, शंकाकार का शंकर कहना है। परंतु शेष कर्मों की, यानी अन्य कर्मों में ये क्यों लागू करते हैं आप? शेष कर्मों की अजघन्य प्रदेश विभक्ति असंख्यात विभाग अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 33 सागर की आयु वाले जीवों में एकेंद्रीय जीव के योग को देखते हुए असंख्यात गुणे पंचेंद्रिय जीव के योग के द्वारा उनका द्रव्य संचित होता है। यानी ये क्षपित कर्मांशिक से आया है, इसलिए एकेंद्रीय का योग लिया यहाँ पर। तो जब पंचेंद्रिय में आता है तो उसके योग्य वो वहाँ अधिक प्रदेश का बंध करेगा, समय प्रबद्ध उसके बड़े होंगे। यहाँ लिखा ना ऊपर, क्या लिखा था देखो, 12 कषाय और 9 कषायों के नियम से अजघन्य होती है, वो प्रदेश हुआ है ऊपर, प्रदेश करना, कल भी नहीं देखा आज भी नहीं देखा। वहां भी कहा था असंख्यात वा भाग अधिक है, यानी सबको एक साथ नहीं है, 12 कषाय और 9 कषाय, उसमें से स्त्रीवेद और नपुसक वेद के लिए शंकाकार मानने को तैयार है, परंतु अन्य जो 12 कषाय और 6 कषाय है उसके बारे में कहते हैं कि वो असंख्यात वा भाग अधिक क्यों कह रहे हो, वो अधिक नहीं हो सकती है, यानी अजघन्य जो है, क्योंकि उनकी जघन्य कहां पर घटित होती है? पहले समय में। 12 कषाय और 6 कषाय पहले समय में घटित होती है, जघन्य। तो उस जघन्य के साथ इसके कंपेयर कर रहे यहाँ वाली, तो वो कहते कि वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? वहां पर तो उसने एकेंद्रिय में घटा कर आया था, वो क्षपित कर्मांशिक लिया था, अब यहाँ पंचेंद्रिय जीव है तो नरक में उसने कितना सारा बंद किया है। एकेंद्रिय के योग की अपेक्षा पंचेंद्रियों का योग असंख्यात गुणा है, तो उसने यहाँ प्रदेश बंद भी अधिक किया है, समय प्रबद्ध उसके बड़े हुए होंगे, तो और ज्यादा अधिक होना चाहिए थे, असंख्यात वा भाग ही अधिक क्यों कहते हैं, ये इसका कहना है। शंका ख्याल में आई ना? तो हम उसका उत्तर देखेंगे। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक जीव के जघन्य द्रव्य को देखते हुए गुणित कर्मांशिक जीव के भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य असंख्यात गुणाहीन होता है, क्या कहते हैं, क्षपित कर्मांशिक जीव के जघन्य द्रव्य को देखते हुए। भुजगार काल और अल्पतर काल उसके कितने काल तक लगातार भुजगार जैसे बंद करेगा, यानी अधिक से अधिक प्रदेश विभक्ति लेगा, उसको कहेंगे भुजगार काल कंटिन्यूस। अधिक होना चाहिए। हाँ ऊपर क्या लिखे, हीन लिखा है। हाँ वो असंख्यात गुना होना चाहिए ना, देखो ऊपर हम देखते हैं नो 100-200, नीचे से चौथी लाइन हम प्राकृत में देखते हैं। खविद कम्बंसी जहन्न दवम पेक्षिदून गुणित कम्बंसी भुजगार कालमी संचित दवस असंख्यज गुण हीनता दो। एक मिनट, संचित हुआ द्रव्य नहीं, संचित दौवस असंख्यज गुणहीनता दो, संचित हुए द्रव्य से असंख्यात गुणहीन होता है। क्षपित कर्मांशिक जीव के जघन्य द्रव्य को देखते हुए ऊपर फिर पढ़ते हैं, खविद कम्बंसीय जहन्य दवम पेक्षिदून देखते हुए, गुणित कम्बंसीय भुजगार कालमी संचित दवस असंख्यज गुणहीनता दो। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि क्षपित कर्मांशिक जीव के जघन्य द्रव्य को अगर हम देखेंगे तो वो गुणित कर्मांशिक जीव के भुजगार के काल के भीतर संचित हुए द्रव्य से असंख्यात गुणहीन होता है। द्रव्य से चाहिए, ये द्रव्य असंख्यात गुणा नहीं हो सकता। हाँ। इससे वो असंख्यात गुणहीन होता है, यानी द्रव्य के आगे क्षपित कर्मांशिक वाला जघन्य लिया है और गुणित में मैक्सिमम वाला लिया है। कौन सा? भुजगार काल में संचित हुआ द्रव्य को अगर कंपेयर करेंगे तो भी वो असंख्यात यानी असंख्यात गुणाहीन, वो पहले वाला असंख्यात गुणाहीन है, ये असंख्यात गुणा हो जाता है। ये हम पेंसिल से करेंगे, काल के भीतर संचित हुए द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन होता है। द्रव्य से ये ऐसा ही लोभ के बारे में पहले शंका समाधान हुआ। हाँ अभी वही पूछेंगे, फिर शंका होती कि ऐसा है तो असंख्यात गुणा कहना चाहिए था उसको, जघन्य से ये असंख्यात गुणा है ऐसा कह देते। अभी हम वो लोभ के बारे में देखेंगे, वहां भी ऐसी यहाँ 62 पेज पर है, जघन्य के प्रकरण में मूल में उन्होंने जो लिया था वो से 99 नंबर का पैराग्राफ 62 पेज पर, वहां तीसरी लाइन के लास्ट में कि लोभ संज्वलन और छह नौकषायों के नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। यहां लिखा ना उसके ऊपर, या जहाँ मिथ्यात्व की जघन्य है वहाँ लोभ की क्या पोजीशन है संज्वलन की, तो कहते वो असंख्यात्व भाग अधिक है। इस पर शंका समाधान चली थी, उस पर शंका क्या पूछी थी कि सम्यक्त्व के साथ वो दो सहस्र सागर काल तक भ्रमण किया है और वहां उसने जो संचित किए है द्रव्य वो तो असंख्यात गुणे होते हैं, असंख्यात विभाग अधिक नहीं, क्योंकि एकेन्द्रिय जीव के उत्कृष्ट योग से भी पंचेन्द्रिय जीव का जघन्य योग असंख्यात गुणा पाया जाता है, ये वहां बात बताई गई। ऐसी यहाँ चर्चा फिर चलेगी, वहां का फिर पढ़ रहे हैं 62 पेज पर लास्ट में। वहां कहते हैं दो छासर सागर काल के भीतर लोभ संज्वलन का निरंतर बंद करता हुआ भी अपने जघन्य द्रव्य से वह विशेष अधिक ही होता है, क्योंकि अभी देखो अल्पतर काल के भीतर क्षय को प्राप्त होने वाले द्रव्य से, वहां क्षय और संचय ऐसी बात कंपेयर की थी, द्रव्य से लिखा ना, भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य असंख्यात विभाग अधिक होता है। अभी यहाँ हम ऊपर पढ़ेंगे उसका प्राकृत अपदर कालम में झीन दव्वादो, झीने ने क्षीण क्षय को प्राप्त हुआ, दव्वादो भुजगार कालम में संचित दव्वस असंख्यज भाग भयतादो, द्रव्य के असंख्यात भाग अधिकपना पाया जाता है, भुजगार काल में संचित द्रव्य का असंख्यात दव्यस्य असंख्यज भाग भयतादो दव्वादो। अभी यहाँ क्या कहते हैं, गुणित कम्मन से भुजगार काल में संचित दव्यस्य असंख्यज गुणहीनतादो, नहीं नहीं वो द्रव्य से नहीं, वो द्रव्य असंख्यात गुणहीन होता है, द्रव्य के चाहिए, द्रव्य से नहीं, यानी वही जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया है ना। नहीं नहीं गुणित कमोंस्य भुजगार कालम में संचित दव्यस्य असंख्यज गुणहीनतादो, वो द्रव्य के चाहिए, द्रव्य के, यानी वो के नहीं लगाते तो भी वही अर्थ होता है। यहाँ ये अर्थ भुजगार काल के भीतर संचित हुए द्रव्य ज्यादा हीन बता रहे, उल्टा बता रहे, क्षपित कर्मांशिक जीव के जघन्य द्रव्य को देखते हुए गुणित कर्मांशिक जीव के भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य असंख्यात गुणाहीन होता है। हम आगे पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा शायद। यह किस प्रमाण से जाना जाता है, इसी सन्निकर्ष से जाना जाता है। फिर शंका, ऐसा होने पर जघन्य द्रव्य से उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यात गुणा होता है, ऐसा कथन करने वाले वेदना चूर्णी सूत्रों के साथ विरोध आता है। ऐसा निश्चय नहीं करना क्योंकि वह भिन्न उपदेश है। हम अभी 68 पर आते हैं, वो वैसा ही रखेंगे हम आगे, उसका समाधान जहाँ होगा। पर आते ना, सम्यक्त्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, अभी सम्यक्त्व की जघन्य दी किसमें, नारकियों में, मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, क्योंकि सम्यक्त्व की हमने लास्ट में रखी, सम्यक दृष्टि के अंतिम समय में, और सम्यक की जघन्य कब होगी? हाँ, वो दीर्घ उद्वेल नक्षत्र कर्मोचित करते करते नारकी में आया है, ऐसा लिया उस पोजीशन पर, वो तो मिथ्या दृष्टि है, बांध रहा है, तो उसकी अजगण्य है। कितनी है ज्यादा? जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है, क्योंकि जब सम्यक्त्व की अंतिम स्थिति है, अंतिम निषेक है, तब सम्यक मिथ्यात्व के अभी बाकी है ज्यादा, उसका जघन्य पल्ले के असंख्यात भाग बाद हो जाएगा पश्चात, इसलिए उसकी अजगण्य है। जो कितनी असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि उसमें वो उद्वेलना कांडक वगैरह हो जाएंगे, तो वहां पर उसका बहुत ज्यादा माल है, तो इसलिए असंख्यात गुणी अधिक कहा। अनंतानुबंधी की भी जघन्य कब होती है? वो तो विसंजना के अंतिम समय में, उसके कंपैरिजन में ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उद्वेलना वाला लिया है, यहाँ पर उसके कितने असंख्यात गुना ज्यादा है, क्योंकि विसंजना में भी उसके कांडक विंडक होते हैं, तो वहां बहुत सारे छिपाए जाते हैं। सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, अब इसके सम्यक की क्या पोजीशन होगी? वो सत्ता ही नहीं होगी। मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश भक्ति होती है, क्योंकि उसका उद्वेलना का अंतिम समय है, बाकी तो कर्म बंद रहे वहां पर, मिथ्या दृष्टि जीव है, तो बाकी की अजघन्य है। जो असंख्यात्व भाग अधिक होती है, अनंतानुबंधी चतुष्क के नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। जैसे हमने सम्यक के साथ लगाया, वैसे इसको लगाना है। अब आगे अनंतानुबंधी, अंता हुआ है, अनंतानुबंधी क्रोध की अनंतानुबंधी क्रोध की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है। यानी जहाँ अनंतानुबंधी का क्रोध का जघन्य है, कब होगा वो भी संयोजना वाला? दो बार करा ना, पहले शुरुआत में एक बार किया, फिर वो समय दृष्टि रहा, फिर लास्ट में जाके उसने फिर भी संयोजना की, तो उस पोजीशन पर मिथ्या तो 12 कषाय और 9 कषायों की अजगण्य होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि ये तो सम्यक दृष्टि है ना, विसंयोजना करने वाला, और वो हमने सम्यक को सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य उद्वेलना वाला लिया था लंबे काल में, तो उसकी तो एक निषेक बाकी था, और यहाँ तो उसके अंत कोड़ा कोड़ी है। पंखा बंद करो, चलो। अनंतानुबंधी मान माया और लोभ की नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है। जहाँ क्रोध की जघन्य है, वहाँ अन्य दो में थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, हमने पहले देखा था ना। यदि अजघन्य होती है तो वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत वे भाग अधिक होती है या असंख्यात वे भाग अधिक होती है। अनंतानुबंधी के चार में आपस में बता रहे हैं, अनंत गुणा अधिक हो सकता है, असंख्यातवा अनंत गुणा नहीं, अनंतवा भाग अधिक हो सकता है या असंख्यातवा भाग अधिक हो सकता है। इसी प्रकार अनंत अनुबंधी मान माया और लोभ की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जघन्य प्रदेश भक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व और 7-9 कषायों की नियम से अजघन्य होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। क्योंकि मिथ्यात्व की जगन्य हमने देखी थी, पहले सम्यक तो प्राप्त करेगा अंतर्मूर्त में क्षपित वाला, फिर लास्ट में जाके जब मिथ्यात्व में जाएगा उसके पहले सम्यक्त्व का अंतिम समय लेना, वहां मिथ्यात्व की जगन्य पाई जाती है। उस कंपैरिजन में अब वो स्टार्टिंग में, बारह कषाय का जगन्य कब है, स्टार्टिंग में है, क्षपित कर्मवशिक से आया हुआ, उसके कंपेयर में हम उसको ले लेते हैं तो ये जब इसका अप्रत्याख्यानावरण का जगन्य है उस समय मिथ्यात्वादी का अजगण्य है, कितना ज्यादा है, असंख्यात्व भाग अधिक है। सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी गणी हुआ ना, असंख्यात गुणी अधिक होती है। ग्यारह कषाय, बारह में से अप्रत्याख्यान क्रोध को अलग निकाला इसलिए बाकी ग्यारह रहे। ग्यारह कषाय भय और जुगुप्सा की, अभी जो सात नौ कषाय लिए थे ना ऊपर, यानी भय जुगुप्सा बिना, नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है और अजगण्य प्रदेश विभक्ति भी होती है। जघन्य भी और अजगण्य भी लिया है और बाकी सात को अलग निकाला है, क्योंकि वो सात है वो प्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं, इसलिए उसका जघन्य भी हो सकता है, प्रतिपक्ष का बंध हो जाए तो अजगण्य है, जघन्य उसका अंतर्मूर्त पीछे हो जाए, इसलिए दोनों ऑप्शन लिए सात नौकशाओं को जो लिया था उसने, तो प्रतिपक्ष वाली है वो प्रकृतियां। यदि अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत विभाग अधिक होती है या असंख्यात विभाग अधिक होती है, क्योंकि ये तो उसके साथ साथ बनने वाली प्रकृतियां हैं। इसी प्रकार ग्यारह कषाय भय और जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब स्त्रीवेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व बारह कषाय और आठ नौ कषाय उनकी नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। स्त्रीवेद का जघन्य कब लेना है, क्षपित कर्मवशिक आया है, सातवें नरक में उत्पन्न हुआ है, अंतर्मूर्त में सम्यक प्राप्त किया है, विसंयोजना भी करा उसको, फिर जाके आयु में अंतर्मूर्त बाकी है, तब वो समय दृष्टि में से मिथ्यात्व होगा, सम्यक्त्व के अंतिम समय में मिथ्यात्व का जघन्य है। स्त्रीवेद का जघन्य कब है, मिथ्यात्व में गया है और उसने प्रतिपक्ष का बंध किया है, तो वो प्रतिपक्ष के बंध काल के अंतिम समय में उसका स्त्रीवेद का जघन्य है। अब बाय दैट टाइम मिथ्यात्व का और संचय हुआ ना, नया बंध किया, तो मिथ्यात्व जो जघन्य हुआ था वो अजघन्य हो गया। बाकी बारह कषाय और ये जो नौ कषाय है, सात नौ कषाय, वो तो आयु के शुरू में पहले समय में जघन्य होते, यहाँ पर तो अजघन्य ही हो गए, तो कितने अधिक होते हैं, तो असंख्यात में भाग अधिक होते। ख्याल में आई बात, ये सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। किसके साथ बात चल रही, स्त्रीवेद के जघन्य के साथ, क्योंकि अभी ये जो मिथ्या दृष्टि है अभी यह नया बंध भी कर रहा है, अभी भी सम्यक्त्व में से वो छूटकर मिथ्यात्व में आया हुआ, तो उसके सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व तो असंख्यात गुना है एज कम्पेयर टू वो उद्वेलना वाला हमने देखा था क्षपित कर्मवशिक, इसलिए वो असंख्यात गुना अधिक बताया। इसी प्रकार पुरुष वेद और नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी उसको भी अपना अपना जब जगन है उसके साथ अन्य कर्मों को ऐसा ही लगाना। शंका, नपुसक वेद के द्रव्य के जगन्य रहने पर मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात विभाग अधिक होवे, क्यों, क्योंकि उसको अंतर्मूर्त ही हुआ है जगन्य के बाद, इसलिए उसका थोड़े ही प्रदेश बढ़े, ये तो बात ठीक है, परंतु पुरुष वेद द्रव्य के जगन्य रहने पर मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुणे अधिक को छोड़कर असंख्यात व्यभाग अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त्व को ग्रहण करके 33 सागर प्रमाण काल तक बंध के बिना वह अवस्थित रहता है। यहाँ क्या कहते हैं, पुरुष वेद के द्रव्य के जगन्य रहने पर, यानी जहां पुरुष वेद का द्रव्य जगन्य रहता है वहां पर मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुणा होना चाहिए, उनका कहना है। असंख्यात गुणा अधिक को छोड़कर असंख्यात विभाग अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त को ग्रहण करके 33 सागर प्रमाण काल तक बंध के बिना वह अवस्थित रहता है। पुरुष वेद का जगन्य कब रहेगा? पहले में, शुरू में होगा, वहां उसका जगन्य है। पुरुष वेद का जगन्य है वहां, उस समय मिथ्यात्व का ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद मिथ्यात्व की जगन्य करने के लिए हमने उसको अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त करा कर 33 सागर, लगभग 33 सागर तक एक अंतर्मूर्त कम समय दृष्टि रखा था। तो उतने काल में देखो, सम्यक्त्व को ग्रहण करके 33 सागर प्रमाण काल तक बंध के बिना वह अवस्थित रहता है। कौन? मिथ्यात्व। नया बंध तो नहीं था सम्यक्त्व के काल में, तो उसका नया बंध नहीं हुआ था, तो बंध नहीं हुआ था और फिर वहां गल गया था इतना, तब जाके मिथ्यात्व का जगन्य हुआ था 33 सागर के अंत में। तो जहां पुरुष वेद का जगन्य है वहां मिथ्यात्व का असंख्यात गुणा अधिक होना चाहिए, इसका कहना है। उसका समाधान पढ़ेंगे तो कहते हैं नहीं, क्योंकि 33 सागर काल तक सम्यक्त्व के साथ अवस्थित रहने वाले जीव के जो मिथ्यात्व का द्रव्य होता है वह भी पुरुष वेद के जघन्य सत्कर्म वाले जीव के मिथ्यात्व के द्रव्य से असंख्यात विभाग प्रमाण कम ही होता है। इस आचार्य के उपदेश अनुसार गुणित कर्मांशिक और क्षपित कर्मांशिक जीव के अंतिम निषेक से लेकर नीचे एक समय अधिक आबादा काल के प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थिति के प्रति विशेषहीन क्रम से प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है। क्या कहते हैं, गुणित कर्मांशिक और क्षपित कर्मांशिक जीव के अंतिम निषेक से लेकर नीचे एक समय अधिक आबादा काल के प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थिति के प्रति विशेषहीन क्रम से प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है। विशेषहीन क्यों? विशेष अधिक क्या? अच्छा, उल्टा करने से विशेषहीन हो जाता है। हम हमेशा निषेक रचना ऊपर विशेषहीन देखते हैं, नीचे विशेष अधिक होती है। यहाँ क्या लिखते देखेंगे, ऊपर लिखा है ना, एदसायरियस उदेसेन गुणित खविद कम्मंसियेसु, दोनों लिए, दोनों ही जो है गुणित कर्मांशिक हो या क्षपित कर्मांशिक हो, उसके चरिम निषेग पहुड़ी विशेषहीन कमेन हेठा जाव समया ही आवादाति ठिदिम परिपदेशावठाना दो। यानी यही बताते हैं कि अंतिम निषेक में ज्यादा है और नीचे विशेष हीन क्रम से उल्टी प्रदेश रचना हो रही है उनमें। नरक में संक्लेश परिणाम ज्यादा होने से ऊपर उनके प्रदेश ज्यादा रहते हैं। उत्कर्षण नहीं कहेंगे, वो रचना उसकी ऐसी उल्टी हो जाती है। मिथ्यात्व का तो नया बंध है ही नहीं वहां पर। या पहले संक्लेश परिणाम के कारण उसने उल्टा कर दिया है, ऐसा भी ले सकते हैं। ये जब तक मिथ्यात्व में रहता है तब तक उल्टा क्रम से ले लेना उसको, क्योंकि सम्यक्त्व अवस्था में तो उसका उत्कर्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उत्कर्षण के लिए नए बंध की अपेक्षा होती है। यहाँ गुणित कर्मांशिक भी अगर लेते हैं और उसका भी हम मैक्सिमम द्रव्य यहाँ पर ले लेंगे। हमने मिथ्यात्व का जघन्य कब लिया था? लास्ट में जाकर मिथ्यात्व का जघन्य हमने लास्ट में देखा था। तो उसका कहना है हमेशा क्या होता है, लास्ट में तो परमाणु कम है ऊपर ऊपर, ये तो गल गए थे उसके और ये रहे थे। इसके कंपैरिजन में उस जो पुरुषवेद का जघन्य है तब इसका द्रव्य असंख्यात गुना होना चाहिए था, थोड़ा ही अधिक क्यों कहते हैं? तो इसमें ही उल्टी रचना होने के कारण नीचे के जो निशे गल गए थे वो कम प्रदेश वाले थे और ज्यादा प्रदेश वाले उसके वहां रहते हैं जघन्य के लिए। तो उसके कंपैरिजन में यहां पर उसका असंख्यात्व भाग अधिक है। इसको कहते हैं ना वो अनुलोम प्रतिलोम, ऐसी रचना कहते हैं, यानी नीचे ज्यादा प्रदेश और ऊपर कम। ये तो ऑर्डिनरी हमेशा ऐसा होता है, जहां संक्लेश ज्यादा होते हैं वहां नीचे कम परमाणु ऊपर ज्यादा होते हैं, ये सहज ऐसी रचना होती है। तो यह किस प्रमाण से जाना जाता है? इसी सन्निकर्ष से जाना जाता है। प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, दंड देना। अब कहते अनुलोम और विलोम प्रदेश रचना के मध्य कौन सी प्रदेश रचना समीचीन है, यह उत्तरोत्तर जिनवाणी के क्षीण होने होते जाने से ज्ञात नहीं होता, इसलिए दोनों उपदेशों का यहाँ पर संग्रह करना चाहिए। ये संक्लेश के कारण नहीं है, ऑर्डिनरीली ऐसी रचना हो सकती है, ऐसा कहना है। हाँ, दोनों ही रचना होती है। तो उस रचना के अनुसार असंख्यात्व भाग ही अधिक यहाँ पाया जाएगा। इसको कहेंगे अनुलोम और प्रतिलोम, यानी ये नीचे ज्यादा ऊपर कम या ऊपर ज्यादा नीचे कम। नहीं नहीं, ये अनुलोम है, ये प्रतिलोम है। अनुलोम जैसे हम सीधा करते हैं ना, जैसे ऑर्डिनरी जो हम हमेशा उपदेश देते हैं, और प्रतिलोम है उससे उल्टा, उल्टे क्रम से ऊपर ज्यादा और नीचे कम। विलोम, हाँ, ये अनुलोम विलोम ये कहीं भी लग सकते हैं। देखो अनुलोम प्रतिलोम और भी आता है ना, आगाल प्रत्यागाल ऐसे भी शब्द आते हैं ना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाना। अनुलोम प्रतिलोम यानी किस ऑर्डर से है, एक सीधी ऑर्डर एक उल्टी ऑर्डर, उसको अनुलोम प्रतिलोम कहें। सीधी ऑर्डर नीचे ज्यादा ऊपर कम, या निषेक रचना ऐसे भी होती है, ये उनका कहना है, इनको प्रतिलोम कहेंगे, विलोम कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। यहाँ विलोम का है, अनुलोम और विलोम प्रदेश रचना के मध्य यानी उसमें से कौन सी सही है? यहाँ तो आप बता रहे ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है इसलिए वो घटित होता है। तो कहते हैं दोनों ही उपदेश प्राप्त है। अब आगे हास्य की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 7 नौ कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात्व भाग अधिक होती है। हमने देखा ना हास्य रति वगैरह जो है प्रतिपक्ष के बंध काल, यानी वो क्षपित कर्मांशिक आया है, नरक में उत्पन्न हुआ है और प्रतिपक्ष का बंध चल रहा है, तब इसका जघन्य होगा। देखो रति इसके साथ बंधने वाली है, इसलिए इसको रति को यहाँ छोड़ दिया, हास्य को भी छोड़ा है और रति को भी छोड़ा, क्योंकि हास्य के साथ हम अन्य को लगा रहे हैं, यानी साथ में किसको छोड़ा है? हास्य और रति को। क्योंकि रति व हास्य के साथ साथ बनती है, यानी उनका बंधने का काल समान होगा। प्रतिपक्ष का बंध चल रहा है तो इन दोनों का ही बंध नहीं हो रहा है। अब यहाँ हास्य का जघन्य कब घटित होगा? क्षपित कर्मवशिक आया है, यहाँ उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने पर वो शोक अरति का बंध कर रहा है, उसके लिए अंतर्मूर्त लगेगा। हाँ, तो उसके कंपैरिजन में अभी वो अजघन्य है, ख्याल में ना, उसके अपने का जघन्य को कंपेयर करेंगे तो अभी उसका अजघन्य है। जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात और अनंतानुबंधी चतुष्को की नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि उनका अपना जगन्य एक का तो उद्वेलना में और एक विसंयोजना में है, उसके तुलना में यहाँ पर उसका असंख्यात गुणा है। रति की नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है, क्योंकि परमाणु का प्रमाण अलग अलग हो सकता है, तो ये हास्य के साथ बनती तो है परंतु हर एक का अपना जो है परमाणु अलग अलग होता है, तो जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है। यदि अजघन्य विभक्ति होती है वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत विभाग अधिक होती है या असंख्यात विभाग अधिक होती है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसको दोनों को एक साथ रखा है, इसके जघन्य होते उसका जघन्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यदि अजघन्य हो तो अनंत वा भाग अधिक होगा या असंख्यात वा भाग अधिक होगा। हाँ, यानी उसी समय उसका अगर उद्वेलना कंप्लीट होती है तो जघन्य भी हो सकती है, ऐसा कहना है शिव भाई का, अरविंद भाई का, हाँ हो सकता है वहां पर। परंतु नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, नियम से बताया। हाँ, क्योंकि हम तो देखते हैं वो कहीं भी हो सकती है उसका। हास्य के जघन्य समय वो नहीं होगी, देखो अरति की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, अभी हास्य को छोड़कर अरति लिया, अब अरति के साथ केवल शोक को रखेंगे, बाकी सब सात को अलग नहीं क्या लेंगे। मिथ्यात्व 12 कषाय और 7 9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। यहाँ सात में अरति और शोक बिना, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। शोक की नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य होती है तो दो स्थान पतित होती है, या तो अनंतवा भाग अधिक होती है या असंख्यात विभाग अधिक होती है। पहले ऐसे देखा था ना, अरति के साथ शोक बनता है तो उसकी जघन्य हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यदि अजघन्य हो तो अनंतवा भाग अधिक होगा या असंख्यात भाग। इसी प्रकार शोक की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी जहां शोक का जघन्य है वहां क्या होगा, जैसे अरति पर लगाए वैसे उस पर भी घटित करना। सातवीं पृथ्वी में इसी प्रकार जानना चाहिए, पहली से लेकर छठी पृथ्वी तक इसी प्रकार भंग है, इतनी विशेषता है। स्त्री वेद और नपुसक वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाला जीव अनंतानुबंधी चतुष्क की अविभक्ति वाला होता है, ये ऐसा क्यों कहा? देखो स्त्रीवेद नपुंसक वेद का जघन्य कब लेना? अन्य नरकों में, क्षपित कर्मोशिक से आया है, आने पर सम्यक को प्राप्त किया है, अनंतानुबंधी की विषय योजना की है और लंबी आयु लेकर वहां उस नरक में सम्यक दृष्टि ही रहा अंत समय तक। तो उसने अनंतानुबंधी की विषय योजना की, ऐसा जीव लिया ना, तभी तो उसका जघन्य घटित होगा। अनंतानुबंधी विसर्जन करते समय भी किसकी बात चल रही है अपनी, स्त्री वेद और नपुसक वेद, क्योंकि उसको लंबे से लंबे काल तक सम्य दृष्टि ही रखना है। सातवें नरक में तो उसको मिथ्यात्व में लाते थे और फिर अंतर्मूर्त बाद स्त्री वेद का जघन्य करते थे, यहाँ सम्यक दृष्टि ही रखना है उसको, क्योंकि छठे नरक तक तो सम्यक साथ मरकर मनुष्य होगा। हाँ, पहले को क्यों छोड़ा, स्त्रीवेद और नपुसक वेद की जगन्य की बात चल रही है, पर पहले नरक में उसका जो वहां भी क्षपित कर्मांशिक वाला, वो क्षायिक वाले की इतनी लंबी आयु भी नहीं होगी। क्षायिक समय दृष्टि की आयु कम होती है वहां पर। कहां छोड़ा, पहली से छठी पृथ्वी तक ले लिया ना, लिया ना पहले से छठी। तो वो विषय योजना उसने की है, इसलिए अविभक्ति वाला लिया। समय दृष्टि नारकी को पुरुष वेद का ही बंध होगा। हाँ, इसीलिए तो उसका जघन्य कर दिया ना, उसका नया बंध नहीं हो रहा है और फिर मिथ्यात्व में जाकर भी उसको प्रतिपक्ष का बंध कराया था। मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है ना, मिथ्या दृष्टि तो नपुसक वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद कुछ भी बांधेगा। सातवें नरक के लिए उसको मिथ्यात्व में आना पड़ेगा, अन्यत्र उसको समय दृष्टि ही रखना है और समय को क्या अंतिम समय लेना। तो वो कौन सा जीव लिया था, विषय योजना वाला लिया था, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की विभक्ति ही नहीं है, अविभक्ति वाला, ये बात बताने चाहते हैं। विसर्जना करके लंबे काल तक समय दृष्टि रहा है, विसर्जना क्यों कराई है, विसर्जना के काल में भी स्थिति कांडक घात होते हैं, इसलिए। अब तिर्यंच गति में, तिर्यंचों का भंग पहली पृथ्वी के समान है, इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और नपुसक वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के नियम से अविभक्ति वाला होता है। ये कौन सा जीव लिया, अभी क्षायिक, क्षायिक लिया, हाँ, बहुभूमि वाला लिया। हाँ, क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच भोग भूमि में ही पाए जाते। गुणस्थान कौन सा है उनका, चौथा, पांचवे वाले तो वेदक वाले हैं, क्योंकि वो तो कर्म भूमि वाले तिर्यंच हैं, वेदक हो गए, प्रथम उपशम वाले हो गए। क्षायिक वाला तो भोग भूमि में, जिसने पहले तिर्यंच आयु बांधी है मनुष्य ने और फिर उसने क्षायिक कर लिया है, कृतकृत्य में आएगा या क्षायिक करके बाद में आएगा, पूरा क्षायिक वो मनुष्य गति में ही पूरा करेगा, बिल्कुल जैसे श्रेणिक राजा पूरा करके फिर नरक में उत्पन्न हुआ है। कृतकृत्य अवस्था में जाए या क्षायिक पूरा करके जाए, जिसकी आयु वहीं पर खत्म होती है कृतकृत्य अवस्था में, वो कृतकृत्य के साथ वहां जन्म लेगा और वहां वो पूरा करेगा निष्ठापन। पर जिसकी अभी आयु बाकी है, तिर्यंच आयु तो बांध दी है, समय तो प्राप्त किया है, क्षायिक समय तो प्राप्त किया है, अभी उसकी मनुष्य आयु चल रही है, तो अपना काल पूरा करके क्षय के साथ वहां उत्पन्न होगा, तो उसके ये इनकी सत्ता ही नहीं है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए, योनिनी को छोड़ा। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में पहली पृथ्वी के समान भंग है। पहली पृथ्वी क्यों लिखा? थोड़ा पुढ़ भी भंगो। ऊपर भी पहली पृथ्वी के समान भंग, थोड़ा पुढ़ भी भंगो। पहली पृथ्वी का, हाँ वहां भी पृथ्वी की, पहली पृथ्वी का निकालो। आदेश में हमने देखा था नारकियों में, वहां पहली पृथ्वी का अलग बताया कि नहीं बताया? पहली पृथ्वी के समान क्यों लिखा? पड़म पुढ़ विभंगो। या ऐसा ले सकते हैं ना, वहां पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में उत्पन्न हुआ है, मिथ्यात्व से आया है और फिर समय को प्राप्त किया और आयु के अंत में उसका मिथ्यात्व का जगह नहीं होगा। नहीं, मिथ्यात्व के जगहने के लिए कृतकृत्य तो इसमें उत्पन्न ही नहीं होता है। स्त्री है तो यहाँ आने के बाद उसने प्राप्त किया है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में, हाँ नहीं, उसमें तो पहली पृथ्वी के समान जो भंग लिखा है यानी जो क्षायिक बिना वाला जो होता है वैसा ले सकते हैं। हाँ अनंतानुबंधी की विसर्जना कैसे हो सकती? हाँ यहाँ वह तो बताया, यहाँ आया है एक अंतर्मुहूर्त में समय को, अंतर्मुहूर्त ही यथा योग्य वहाँ का जो कोई है गर्भज है ना। हाँ लास्ट में तो समय दृष्टि रखना है उसको। कौन से तीन? हाँ उसमें तो फर्क होगा ही, क्योंकि उनके जघन्य अपने अपने वो उद्वेलना में ही घटित करना है। मिथ्यात्व का जघन्य वो जो उसको समय दृष्टि रखना है लास्ट तक। और यहाँ तो बात श्रीवेद और नपुसक वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाला है, वो भी लास्ट में रखना उसको, मिथ्यात्व के साथ साथ रखना उसको। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणियाधिक है। मिथ्यात्व की जघन्य तो यहाँ करके आया है उसी को लेना है ना, यहाँ तो कोई सम्यक तो प्राप्त करने की बात नहीं है। हाँ 16 कषाय भय और जुगुप्सा की नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है। यदि अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत विभाग अधिक होती है या असंख्यात विभाग अधिक होती है, यानी सब कर्मों की पहले समय में उसको जगण्य ले ली है। सात नौ कषायों की नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात विभाग अधिक होती है, क्योंकि प्रतिपक्ष वाले लेना। ऊपर भयजुगुप्सा को अलग निकाला ना, तो बाकी जो बची हुई हास्यादि चार और तीन वेद। इसी प्रकार सोलह कषाय भय और जुगुप्सा की मुख्यता सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब सम्यक्त्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक मिथ्यात्व की नियम से अजघन्य होती है जो असंख्यात गुणी अधिक है, क्योंकि उसकी उद्वेलना पहले पूरी होती है, तब इसके अभी बहुत सारे पल्ले के असंख्यात विभाग इतना काल बाकी है, स्थिति तो और बहुत बड़ी है। मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ नौ कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात विभाग अधिक होती है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, यह सम्यक्त्व की नियम से अविभक्ति वाला होता है। कौन सा जीव लिया? जो सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है वो उसका अंतिम समय है, उस समय ये सम्यक्त्व की तो सत्ता ही नहीं है, वो तो पल्ले के असंख्यात विभाग काल पहले ही नष्ट हो गई था। स्त्री वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के तीर्यंच अपर्याप्तकों में है। स्त्री वेद के जघन्य वाले जीव के सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। मिथ्यात्व सोलह कषाय और आठ नौ कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात विभाग अधिक होती है। इसी प्रकार पुरुष वेद और नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी वो पहला समय नहीं लेना है, अंतर्मूर्त बाद लेना है। हास्य की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के रति की नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य होती है तो वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत विभाग अधिक होती है या असंख्यात विभाग अधिक होती है। शेष भंग स्त्री वेद के समान है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्त्री वेद के समान है का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व सोलह कषाय वगैरह सब अजगण्य होती है, यह उसके समान है। अब अरति की जघन्य प्रदेश भक्ति वाले जीव के शोक की नियम से जघन्य भी होती है और अजघन्य प्रदेश भक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है तो दो स्थान पतित होती है, शेष भंग हास्य के समान है, यानी वहां मिथ्यात्व अधिक है अजघन्य रहेगी, असंख्यात्व भाग अधिक रहेगी। इसी प्रकार अर्थात पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों के समान मनुष्य अपर्याप्तकों में जानना चाहिए। मनुष्य गति में मनुष्यों का भंग ओग के समान है, क्योंकि वहां जहां जघन्य है वो घटित होता है मनुष्यों में, क्योंकि ओग से जघन्य तो क्षपणा में होता है जहां जहां। मनुष्य पर्याप्तकों में इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है, स्त्री वेद जहां जहां कहा जाए वहां वहां नियम से अजघन्य असंख्यात भाग अधिक होता है। स्त्री वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के नपुसक वेद प्रदेश विभक्ति स्यात है और स्यात नहीं है। नपुसक वेद की प्रदेश विभक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जहां स्त्री वेद का जघन्य है, यदि है तो नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। देखो क्या कहना चाहते हैं, स्त्री वेद के जघन्य होते हुए न पुस्तक वेद है भी और नहीं भी, ऐसे दो ऑप्शन लिए। एक तो जीव है न पुस्तक वेद की क्षपणा करने वाला, स्त्री वेद की क्षपणा एक समय पहले कर देता है, और एक है स्त्री वेद सही चढ़ने वाला जो न पुस्तक वेद की पहले कर देता है। हाँ, दोनों जगह से जगह नहीं ले लिया उन्होंने। दोनों का अर्थ होता है दोनों जगहने ने, उसमें श्रीवेद सही चढ़ने वाले के भी श्रीवेद का जगहने कहा, और नपुसक वेद सही चढ़ने वाले के भी श्रीवेद का जगहने कहा, दोनों जगह जगहने कहा, ये बात बताना चाहिए। श्रीवेद की जगहने कहा गठित किए थे ना उन्होंने, क्षपणा नहीं होगी, हमने देखा ना छठवीं पुस्तक में स्त्री वेद का जगन्य, वहां उन्होंने नपुसक वेद का किसके होता है तो सारे क्षपित कर्मोचित की बात देखी थी, और फिर वहां नपुसक वेद के लिए नपुसक वेद होकर मनुष्य में जन्मा था, नपुसक वेद का उदय कराने के लिए क्या वो लंबे काल तक समय तो में रखना है, फिर मिथ्यात्व में गया, नपुसक वेद से ही जन्मा, और फिर नपुसक वेद की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, उसको लिया है। उदय के साथ तो नपुसक वेद का जगन्य होता है, स्त्री वेद वाले की स्त्री वेद से ही जन्म है, और क्षपणा करता करते करते अंतम समय लाया है उसका। ख्याल में है ना, पहले उसका क्षपणा का देखो, पहले जहां नपुसक वेद के क्षपणा का काल है, यहां नपुसक वेद की क्षपणा का काल है, किसके लिए? स्त्री वेद और पुरुष वेदी जीवों के लिए। फिर बाद में यहां स्त्री वेद के क्षपणा का काल है, उसका उदय भी लंबा चलेगा, और यह है पुरुष वेद का क्षपणा का काल। अब कोई नपुसक वेद सही चढ़ता है तो इस काल में तो वो नपुसक वेद की क्षपणा कर ही रहा है, परंतु और उसका लंबा चलता है, तो उसका स्त्री वेद की क्षपणा करके एक समय के लिए नपुसक वेद उसका बाकी है, और जो स्त्री वेद सही चढ़ता है वो पहले नपुसक वेद को यहीं पर सीखे पाता है, और यहाँ पर स्त्री वेद की क्षपणा करता है, ये भी उसका अंतिम समय है, इसके लिए भी इसका अंतिम समय है, इसलिए दोनों में घटित होगा। तो जहां स्त्रीवेद का जघन्य है तो स्त्रीवेद से ही चढ़ने वाले के नपुसक वेद का सत्व तो यहीं पर खलास हुआ, और जो नपुसक वेद से ही चढ़ता है उसका स्त्रीवेद का जघन्य यहाँ पर है, एक समय पूर्व तक उसका है। तो स्त्रीवेद का जघन्य नपुसक वेद से ही चढ़ने वाले के जहां स्त्रीवेद का जघन्य है वहां नपुसक वेद का सत्व पड़ा है, नपुसक वेद सहित चढ़ने वाले के यहाँ स्त्री वेद का जगन्य है, उसका नपुसक वेद का सत्व पड़ा है, स्त्री वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले के उसके भी यहाँ पर स्त्री वेद का जगन्य है, पर उसका नपुसक वेद का पहले ही क्षय हो चुका है, ऐसा जीव लेना। हाँ? मनुष्य पर्याप्त को में इतने विषय श्रीवे जहां जाता है वहां वहां नियम से अजगण्य असंख्या तो अभाव अधिक होता है। श्रीवेद की जगन्य प्रदेश भक्ति वाले जीव के नपुसक वेद प्रदेश भक्ति स्यात है और स्यात नहीं है, ये मनुष्य पर्याप्त को में ही उन्होंने घटित किया। हाँ वो स्यात है। अच्छा ऐसा अगर घटित करेंगे तो पुरुष वेद सही चढ़ने वाले के स्त्री वेद की जघन्य पर नपुसक वेद नहीं है, और नपुसक वेद सही चढ़ने वाले के स्त्री वेद की जघन्य है तब नपुसक वेद है। योनिनी को लिया ही नहीं है। फिर से मनुष्य पर्याप्त को में है ना, हाँ तो ये मनुष्य पर्याप्त है, वो पुरुष वेदी और नपुसक वेदी। अब स्त्री वेद सहित जो स्यात है नहीं है की बात की है, वहां ऐसा लेना है पुरुष वेद सहित चढ़ने वाले के स्त्री वेद के जघन्य है तब नपुसक वेद का सत्व नहीं है, क्योंकि वो नपुसक वेद को पहले की पाता है। पुरुष वेदी के, वेदी के ने वेद के उदय से ही चलने, पुरुष वेदी के स्त्री वेद के जघन्य हो तब नपुंसक वेद नहीं है, और नपुंसक वेदी के स्त्री वेद के जघन्य के साथ नपुंसक वेद है। उसको हम कहेंगे जो कितना है क्या है उसकी स्यात है स्यात नहीं उसकी नहीं बात कर रही। देखो मनुष्य पर्याप्त लेते तो उसमें दो जीव है, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी। पुरुष वेदी जीव पुरुष वेद सही श्रेणी चढ़ते हैं, क्योंकि उनका जन्म से मरण तक एक ही वेद रहता है किसी भी जीव का, तो पुरुष वेद सही चढ़ते हैं तो पहले नपुंसक वेद को खिपा दिया, क्षय कर दिया, फिर स्त्री वेद को खिपाना चालू किया, और उसके अंतिम समय में उसका जघन्य है, उस समय नपुंसक वेद का सत्व ही नहीं है। अब मनुष्य पर्याप्त में दूसरे जीव कौन से नपुंसक वेदी है, वो जब श्रेणी चढ़ते हैं तो नपुंसक वेद सही चढ़ने वाले नपुंसक वेद की क्षपणा तो चालू ही करते हैं, स्त्री वेद की भी करते रहते हैं, और स्त्री वेद की जब क्षपणा पूरी होती है उसके एक समय बाद नपुंसक वेद का उदय एक ही समय के लिए, और फिर वो भी अपगत वेदी हो जाता है, उसने भी स्त्री वेद को जघन्य किया है, परंतु उस समय नपुंसक वेद की सत्ता है। नपुंसक वेदी के लिए स्त्री वेद के जघन्य के समय नपुंसक वेद की सत्ता है, पुरुष वेदी जीव के लिए स्त्री वेदी के जघन्य तब नपुंसक वेद की सत्ता नहीं है, इसलिए स्यात है स्यात नहीं है। और यदि है तो नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। हाँ संक्रमण होता है ना वहां पर, इसलिए अजघन्य जो है यानी जो अगर नपुंसक वेद की सत्ता है तो असंख्यात गुणी अधिक है। क्योंकि उसके लास्ट निषेक में असंख्यात गुणा होगा मैम। अब मनुष्यनियों में उग के समान भंग है, इतनी विशेषता है पुरुष वेद और नपुंसक वेद प्रदेश विभक्ति जहां जहां कही जाए वहां वहां नियम से अजघन्य असंख्यात विभाग अधिक होती है। नपुंसक वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के स्त्री वेद प्रदेश विभक्ति नपुंसक वेद की जघन्य वाले के स्त्री वेद प्रदेश विभक्ति क्या जघन्य होती है अजघन्य होती है, नियम से अजघन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है। देखो ये कौन सी मनुष्यनी में घटित कर रहे हैं, मनुष्यनी में नपुंसक वेद की जब जघन्य है तब वो नपुंसक की क्षपणा कर रहा है उसका अंतिम समय लेना, उसकी जब जघन्य है तब स्त्री वेद की तो अभी बहुत पड़ी है, उसकी अजगण्य है, और अजगण्य तो कितनी है, तो असंख्यात गुणी अधिक है। पुरुषवेद की जगन्य प्रदेश भक्ति वाले जीव के मनुष्य नहीं लिया और पुरुषवेद का जगन्य लिया, उसके 11 कषाय और स्त्रीवेद की नियम से असंख्यात गुणी अजगण्य प्रदेश भक्ति होती है। देखो पुरुषवेद की जगन्य कब होगी, अपगत वेद में स्त्री वेदी के लिए नहीं होती है। हाँ परंतु सब लास्ट तक बंदी है, तो सारा स्त्री वेद पुरुष वेद रूप हो गया है और नपुसक वेद भी। तो मनुष्यनी के लिए पुरुष वेद की जगन्य कब है, है ना? देखो क्या कहते हैं, पुरुष वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, हाँ तो कहाँ पर, अधकरण के अंतिम समय में लेना। मनुष्यनी में पुरुष वेद का जघन्य कब होता है, अधक प्रवृत्तकरण का अंतिम समय, जैसे लोभ का लिया था। हाँ किसके लिए, स्त्री वेदी के लिए पुरुष वेद का जघन्य। हाँ बहुत बार आई, अश्विन में हमेशा याद करते हैं ना, श्रीवेदी के लिए श्रीवेद से ही चढ़ने वाले के लिए पुरुष वेद का जघन्य कब होगा, अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में। बाद में तो सारे नपुसक वेद और श्रीवेद पुरुष वेद रूप से होते रहेगी ना, बाद में जघन्य नहीं रहेगा, तो उसका जघन्य है अधकरण के अंतिम समय में। इसलिए वहां क्या लिखा उन्होंने, देखो मनुष्यनी जीव है, पुरुष वेद का जघन्य है, कब है, अध प्रवृत्तन का अंतिम समय, तब 11 कषाय और स्त्रीवेद के नियम से असंख्यात गुणी जघन्य प्रदेश भक्ति थी। तब 11 कषाय है ना, अभी संज्वलन लोभ को अलग निकाला उन्होंने तो ये है उसका अर्थ, वो नीचे कहीं उसका जघन्य है ना, तो ये ना 12 कषाय वहां विद्यमान है। अभी ये अंतिम समय लिया है अध प्रवृत्त करने का, और क्षपक शनि चढ़ने के सन्मुख है, तो क्षायिक समय दृष्टि है, इसलिए अनंत अनुबंधी को छोड़ दिया है, और 11 में एक लोभ को छोड़ा, क्योंकि उसका भी जगन्य हो सकता है ना उस समय में,
हो सकता है
बिल्कुल, हाँ नहीं भी होगा, होगा भी। क्योंकि उसका भी उसी पॉइंट पर उसका जगन्य हो सकता है। हाँ तो कहते 11 कषाय और स्त्रीवेद की नियम से असंख्यात गुणी अजगण्य प्रदेश भक्ति होती है, क्योंकि इसके बाद उसका क्षपणा जब होगा आगे चलकर, अभी उसका असंख्यात गुणा माल है पड़ा हुआ, जो आगे चलकर जगन्य हो जाएगा। लोभ संज्वलन और 7-9 कषायों की नियम से असंख्यात वे भाग अधिक अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है, क्योंकि लोभ संज्वलन अभी बंधेगा, अभी क्योंकि वो जगन्य जघन्य किया है ना उसने। देखो क्या कहते हैं, पुरुषवेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 11 कषाय श्रीवेद की नियम से असंख्यात गुणी अजगण्य प्रदेश भक्ति होती है, और लोभ संज्वलन और 7-9 कषाय उनकी नियम से असंख्यात विभाग अधिक अजगण्य प्रदेश भक्ति होती है। यहाँ पर लोभ संज्वलन और पुरुष वेद का अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य स्वामित्व अवशिष्ट रहने पर परस्पर देखते हुए उनकी परस्पर जघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है, प्रदेश शक्ति हुआ है, प्रदेश विभक्ति। और अजगण्य प्रदेश विभक्ति भी होती है, उसमें भी अजगण्य प्रदेश विभक्ति 2 स्थान पतित होती है। इस प्रकार कथन करने पर असंख्यात वे भाग अधिक का नियम किन निमित्तक होता है, इस बात का विचार कर कथन करना चाहिए। यानी क्यों असंख्यात्व भाग अधिक होता है, ये पहले भी चर्चा आई थी ना वहाँ, उसका ज्यादा क्यों नहीं होता, असंख्यात्व भाग क्यों अधिक है? ये वेदों के उदय के साथ जो क्षपणा होती है हर एक में जो अपनी अपनी विशेषता है, उसके कारण यह मनुष्यनी में अलग घटित हुआ, क्योंकि मनुष्यनी है तो स्त्री वेद सहित वो जीव क्षपणा करेगी, स्त्री वेद के उदय सहित अभी चल रहा है। मनुष्य पर्याप्त कहेंगे तो नपुंसक वेदी और पुरुष वेदी है, तो उनकी क्षपणा में भी अंतर है। अब देवगति में देवों में सामान्य तिरियंचों के समान भंग है। सामान्य तिरियंचों में हमने क्षायिक समय दृष्टि भी उत्पन्न होता हुआ देखा था। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पहली पृथ्वी के समान भंग है। ये पहली पृथ्वी जो लिखा है ना, वो क्षायिक समय दृष्टि के लिए प्रथम पृथ्वी नहीं लेना है, हाँ वहाँ जाके सम्यक तो प्राप्त करेगा, और उसके पहले समय में मेरे ख्याल से उसका जघन्य होगा, इसलिए वहाँ लिया है, क्योंकि वहाँ भी तिरियंचनी में पहली पृथ्वी के समान भंग ऐसा लिखा था। देखो जघन्य हमने मार्गणा में देखा था ना, पहली पृथ्वी का पहली पृथ्वी में लिखना है जघन्य। ये तो वही हमने जो देखा था वहां उत्पन्न होने वाला है। हाँ यहाँ क्या कहते देखो, देवगति में देवों में सामान्य तिरियंचों के समान भंग है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पहली पृथ्वी के समान भंग है। सौधर्म यानी वहां क्या लेना है, सातवें नरक में तो लास्ट में उसको हमने मिथ्या तो मिला है, अब ये समय दृष्टि रखना उसको और अंतिम समय घटित करना। पहली छह तक वैसा ही है, एक से छह तक वैसा ही। सौधर्म और ऐशान कल्प से लेकर उपरी ग्रेवेक तक देवों में तक दोनों में लिखा है, उपरी ग्रेवेक तक दोनों में देवों में चाहिए ना, ऊपर क्या लिखा है, देवो हो, देवों के समान भंग है, देवों में चाहिए, दोनों में लिखा है ना। क्या कहते हैं, सौधर्म ईशान कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में सामान्य देवों के समान भंग है। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, मिथ्यात्व की कब है अभी, हाँ आयु के अंत में, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जन्मा है वहां पर, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, और अजगण्य प्रदेश विभक्ति भी होती है, दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ जगन्य के लिए कुछ उद्वेलना का सवाल ही नहीं है। यदि अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है तो दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत विभाग अधिक होती है या असंख्यातवे असंख्यातावे हुआ असंख्यातवे भाग अधिक होती है। 12 कषाय और 9 कषायों के नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यहीं रुकेंगे अभी हम, क्योंकि उसकी बात अभी अन्य अन्य कर्मों की है ना, देवगति को लेते हुए फिर बढ़ेंगे आगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनो सदा देत होनो। लक्ष्मी।